समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ले चलेंगे आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर हमेशा की तरह रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा में आज हम हैं आपके साथ मुनीश शर्मा और सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार मुनीश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। तो हस्बे दस्तूर हम लाते हैं ताजा तरीन खबरें तो हैं ही, बट बिकॉज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है मुनीश, हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलेंगे। वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। बिकॉज मुनीश, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे न्यूज बुलेटिन का कह सकते हैं हिस्सा नहीं बन पाती, बट दे आर डेफिनेटली वर्थ शेयरिंग विद आवर लिसनर्स, इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए परिक्रमा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट मुनीश। शुभेंदु अधिकारी बिकम्स फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, टेक्स ओथ अलॉन्ग विद 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स।
तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला है।
National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes.
Videsh Mantri Subramanyam Jayashankar ne dvipakshiya sahyog ko aur mazboot karne ke liye Trinidad aur Tobago ke Pradhan Mantri se mulaqat ki.
And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. And now it's time for our segment Dateline India, Munish, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. और आज हम लोग ऑफ कोर्स बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मौजू की। टुडे इज ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रविन्द्रनाथ जयंती एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का। वेल, देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल एंड मैजिकल अबाउट बर्ड्स मुनीश। One season they are perched on electric wires outside our homes, chirping away at sunrise, and then suddenly they are just gone, thousands and thousands of kilometers away, crossing oceans, deserts, mountains, even borders created by humans, but birds never recognize them.
लेकिन सायरा, क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चलता है कि आखिर ये पक्षी जाते कहाँ हैं?
That's right, Manish. Who notices when their numbers begin to fall? Who tracks whether a wetland is disappearing or whether a migration route is becoming dangerous?
और इसका हैरान करने वाला जवाब तो दरअसल है हम लोग। कभी कभी ये कोई लैब में काम करने वाला वैज्ञानिक नहीं होता, ये दूरबीन के लिए कोई स्कूली छात्र हो सकता है, या फिर कोई दादी जो हर सुबह अपनी बालकनी से चिड़ियों को देखती है, या कोई किसान जो अपने खेतों के पास अनजान चिड़ियों को निहारता है, या फिर ऐसा कोई आदमी जो सुबह की सैर के दौरान यूं ही चिड़ियों की कई तरह की फोटो अपलोड कर दिया करता है।
Exactly, Manish, and that's why World Migratory Bird Day this year wants the world to understand through its powerful theme, which is Every Bird Counts, Your Observations Matter. Because every single observation, every small note, every recorded sighting becomes part of a much bigger story.
लेकिन जानती हो सायरा कि केरल में एक नन्हा सा बच्चा इस सर्दी में एक झील के पास कम प्रवासी पक्षियों को देखता है। अफ्रीका में एक पक्षी प्रेमी उनके आने के असामान्य समय को नोट करता है। यूरोप में एक परिवार प्रवास के दौरान वेटलैंड्स में आराम फरमा रहे पक्षियों की तस्वीरें लेता है। पहली नजर में ये पल साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीपों में ऐसे हजारों यहां तक कि लाखों अवलोकन एक साथ आते हैं तो वो ऐसे पैटर्न उजागर करना शुरू कर देते हैं कि जिन्हें वैज्ञानिक अकेले इतनी तेजी से कभी पकड़ नहीं पाते।
That's right. Suddenly these scattered moments turn into critical environmental evidence. That's the beauty of community science. Not complicated labs, not giant machines, but people, ordinary people, Munish, who are paying attention to nature.
जी हाँ दोस्तों, और इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बात यह बनाती है कि पंछियों का प्रवास अपने आप में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। कुछ प्रवासी पक्षी हर साल पूरे पूरे गोलार्धों को पार करके यात्राएं करते हैं। स्मार्टफोन से भी कम वजन वाले छोटे छोटे पक्षी तूफानों, बदलते मौसम, सिकुड़ती आर्द्र भूमियों और देशों को पार करने वाली थका देने वाली यात्राओं का सामना करते हुए जीवित रहते हैं।
इंडीड, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है अपने आप में, खासतौर से जब माइग्रेटरी बर्ड्स का कहते नहीं है, जो वो माइग्रेशन शुरू होता है मुनीश, देयर आर सो मेनी यू नो चैनल्स जो उसको कहते नहीं है ट्रेस करते हैं, एंड इट रियली लीव्स यू ऑस्ट्रक कि कई बार तो हफ्तों हफ्तों तक वो नीचे आते ही नहीं, खाना खाने के लिए कहीं नहीं रुकते, यू नो इट्स अ नॉन स्टॉप जर्नी दैट दे टेक, एंड येट मेनी ऑफ अस बेरली नोटिस देम अंटिल वन मॉर्निंग द साइलेंस आउटसाइड फील्स अनफेमिलियर, एंड दैट्स व्हाई दिस कैंपेन matters, because birds are not only beautiful to look at, they also tell us something about the health of the planet itself.
दरअसल योगदान देने के लिए आपको महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है, शाम की एक साधारण सी सैर भी सार्थक हो जाती है। हो सकता है आप देखें कि सालों बाद गौरैया पास के किसी पार्क में लौट आई हैं। हो सकता है सर्दियों में पक्षियों का कोई झुंड गांव के किसी तालाब के पास आकर रुक जाए, और हो सकता है कि आपके पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए कहें, जब मैं जवान था तब ये पक्षी यहां नहीं होते थे। इस तरह की बातचीत बहुत मायने रखती है, और ये अवलोकन भी मायने रखते हैं।
बिल्कुल, और काश ऐसा हो कि गौरैया वापस आ जाए, बिकॉज अब तो देखते हैं चारों तरफ तो गौरैया नजर ही नहीं आती। गणेश, मेनी ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स टुडे रिलाय हेवीली ऑन व्हाट पीपल रिपोर्ट फ्रॉम देयर लोकल सराउंडिंग्स। Community participation helps experts understand migration routes, breeding patterns, habitat loss and population decline.
और जो लोग पक्षियों को देखना शुरू कर देते हैं वो अक्सर प्रकृति की भी ज्यादा गहराई से परवाह करने लगते हैं। जो लोग कभी वेटलैंड्स को नजरअंदाज करते थे वो अचानक उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो बच्चे पक्षियों को पहचानना शुरू करते हैं वो मौसमों, जंगलों, नदियों और जलवायु के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते चले जाते हैं।
एंड कम्युनिटी स्लोली रिकनेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम। मुनीश, वन स्मॉल ऑब्जर्वेशन दैट लीड्स टू अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस दैट लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स पावरफुल इज़न्ट इट? And well, this year especially significant because International Waterbird Census completes 60 years, which is a global effort that has helped monitor and protect migratory water birds across flyways around the world.
और शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दिल को छू लेने वाला पहलू ये है सायरा, कि अब प्रकृति का संरक्षण सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रह गया है, ये अब हर किसी का है। गिना गया हर पक्षी इस बात का संकेत है कि अब भी कोई है जिसे इसकी परवाह है।
एब्सोल्युटली मुनीश, एंड लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, ऑफ कोर्स ऑन द सेकंड सैटरडे इन मई एंड इन आल्सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज ये ही दो महीने हैं जब माइग्रेशन सबसे ज्यादा होते हैं, एंड यू नो अक्टूबर जब बहुत ज्यादा जहां ठंडी है सर्दियां पड़ती हैं वहां की बर्ड्स वापस आती हैं टूवर्ड्स वार्मर क्लाइमेट्स, and in May when the climate start getting very hot then they go back to cooler temperatures. So these are two phases, these two months, they reflect the two distinct major migration seasons in the northern and southern hemispheres. These dates allow maximum global participation, enabling people to observe and protect birds during their peak spring and autumn movements.
Indeed, Sarah, and that's why we should sometime visit Sultanpur, which is well within Delhi NCR, and of course that place which is called Barkal, and there are many more places like Okhla Bird Sanctuary. I'm sure you must have been there.
Of course, I've heard of them, and I know that you are more of a traveler, and yeah, that's why you are sharing this with our listeners. So of course we should be inspired to, you know, visit the places that Munish has just told. In fact, Okhla Bird Sanctuary ki aapne baat ki, bahut se log jante hi nahi ki wahan pe kitni khoobsurat khoobsurat pakshiyan, you know, aate hain, migratory birds. Even in Lodhi Gardens, Munish, isn't it that you know, if you take a walk in the morning, especially in these times of the year, then you start noticing that some birds, they, you know, that are not seen usually in India, they come. So they have probably traversed a journey of thousands of kilometers, and that's why they are here perched in the branches of your city. So,
Saira, that's why perhaps this Lodi Garden has earned the epithet of what they say, urban oasis. Sometimes you will witness peacocks and skylarks and kingfishers.
Yes,
so it's a very interesting place to visit. तो दोस्तों, दुनिया को ये याद दिलाते हुए कि प्रवासन एक साझा प्राकृतिक चक्र है जो देशों, पारिस्थितिकी तंत्रों और लोगों को आपस में जोड़ता है. इसलिए अगली बार जब पक्षियों का कोई झुंड आपके ऊपर से गुजरे तो शायद उस पल को आप नजरअंदाज न करें, ऊपर देखें, क्योंकि जो चीज आपको एक छोटी सी घटना लगती है वो शायद इस ग्रह की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाए.
That's right, Monish. So we close the topic of world migratory bird, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोजली कह सकते हैं ऑब्जर्व अगर कोई चाहे पक्षियों को करे, चाहे नेचर को करे, चाहे समाज को करे ताकि दुनिया बदल जाए, वो होता है राइटर, isn't it?
बिल्कुल.
We in our country are so fortunate to have some very, very great writers. And of course, since it's the month of May, तो जो greatest writer है हमारे country के कह सकते हैं, उनको हम लोग याद करते हैं.
We are talking about Rabindranath Tagore, and he's definitely well known as a poet, writer, but he was much more like a composer and painter, and he introduced some new education system in India and a stalwart in his own right. बैशाख के 25वें दिन आज बंगाल कुछ अलग ही अंदाज में जागता है. सुबह की हवा में ऐसे गीत घुलते हैं जो दूर से सुनने वालों को भी जाने पहचाने से लगते हैं. सड़कों पर सफेद और लाल साड़ियां लहराती नजर आती हैं. प्रभात फेरी के जुलूसों में युवा कंठ एक साथ गूंज उठते हैं और कहीं कविता, संगीत और स्मृतियों के बीच एक पूरी संस्कृति पल भर के लिए ठहर कर रविंद्रनाथ ठाकुर की उस असाधारण आत्मा का उत्सव मनाती है.
Today marks the 165th birth anniversary of Gurudev, and from the very first light of dawn, celebrations have already filled hearts across the country and beyond. In schools, cultural organizations and neighborhood gatherings, people have come together out of affection for the great writer.
दोस्तों, एक सदी से भी पहले लिखे गए गीत आज भी उसी भावना के साथ गाए जाते हैं. बच्चे ऐसी कविताएं सुनाते हैं जिन्हें शायद वो आज पूरी तरह न समझते हों, फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें गहराई से महसूस करते हैं. रविंद्र संगीत की ताल पर नृत्य प्रस्तुतियां बड़े ही सलीके से प्रस्तुत होती हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग चुपचाप उनके साथ गुनगुनाते हैं, अपने साथ किसी और दौर की वो यादें ताजा करते हुए.
And nowhere does the celebration feel more timeless than at Shantiniketan. At 5 o'clock in the morning, the traditional homage began at Gaurprangan with the soulful strains of Baitalic songs. And before the world had fully awakened, music had already taken over the campus.
और बाद में सुबह वो पूरा क्षेत्र जन्मदिन समारोहों, प्रस्तुतियों और श्रद्धांजलि से जीवंत उठता है, जिसमें भक्ति और संस्कृति का सबसे सुंदर संयोजन देखने को मिला करता है. रविंद्र जयंती की एक खास बात यह है कि यह कभी भी एक औपचारिक आयोजन जैसा नहीं लगता, ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है. हमारे कोलकाता संवाददाता की रिपोर्ट भी तो यही कहती है.
Today is 25th Boishakh, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kobi Guru Rabindranath Thakur. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shubhendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kobi Guru. Kollan Laha reporting from Kolkata.
And Monish, almost every Bengali household has at some point lived with Tagore's words. A rainy afternoon often reminds someone of his songs. A school function carries his poetry. A moment of heartbreak suddenly finds comfort in his lines. And his work lives inside everyday life. And perhaps that is why his influence continues to travel across generations and borders.
दरअसल दोस्तों, भारत से लेकर बांग्लादेश तक, विश्वविद्यालयों के सभागारों से लेकर विदेशों में छोटे छोटे सामुदायिक भवनों तक पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें रविन्द्र संगीत, काव्य पाठ, नृत्य नाटिकाएं और उनकी रचनाओं से प्रेरित नाट्य प्रस्तुतियां शामिल हैं।
Yes, leaders across the country also pay tributes to Gurudev today. The Vice President reflected on how his contributions went far beyond literature. The Prime Minister described him as a writer, thinker and poet of extraordinary brilliance whose words gave voice to humanity's deepest emotions and India's cultural confidence.
Raksha Mantri Rajnath Singh ne kaha hai ki Gurudev ne ek Bharat Shreshth Bharat ki bhavana ko sudrdh kiya, jabki Grih Mantri Amit Shah ne is baat par प्रकाश डाला कि टैगोर के साहित्य, संगीत और दर्शन ने स्वतंत्रता की भावना में किस तरह एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था।
That's right, Monish. Very few individuals have shaped the soul of a nation the way Rabindranath Tagore has. And he has given the world Gitanjali, a work that carried Indian literature to the global stage.
उन्होंने भारत को उसका राष्ट्रगान जनगण मन दिया, ऐसे शब्द जो आज भी हर दिन लाखों लोगों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। लेकिन पुरस्कारों और उपलब्धियों से भी बढ़कर उन्होंने लोगों को कुछ ऐसा दिया जो कहीं अधिक स्थायी है, संवेदनशीलता, चिंतन और जीवन को गहराई और सौंदर्य के साथ देखने का एक अनूठा नजरिया।
Yes, absolutely. Even today, in a fast-moving world filled with noise, Tagore's words continue to feel calm, relevant, and deeply humane. And maybe that is the true magic of Rabindra Jayanti.
दरअसल ये केवल किसी जन्म दिवस का उत्सव मात्र नहीं है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कला समय की सीमाओं से परे हो सकती है, कि कविता आज भी घावों को भर सकती है, और ये कि ज्ञान और करुणा से भरी एक आवाज संगीत के थम जाने के बहुत बाद भी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रह सकती है। और सायरा, अब वक्त हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास।
That's right, we begin Parikrama's journey from down south in Thiruvananthapuram. The synchronized census of the endangered Nilgiri Thar is continuing across the Western Ghats, with Kerala emerging as the major habitat of the species, according to preliminary findings from the Kerala Forest Department. Forest officials said the latest estimation exercise being carried out jointly by Kerala and Tamil Nadu Forest Departments has so far recorded a global population of around 2,000 Nilgiri Thars, of which more than 1,300 are in Kerala. The survey will continue till 17th of May. Let's hear more from our correspondent.
Idavikulam National Park in Idukki District, Kerala continues to be the main stronghold of the species, with 841 individuals recorded from the park alone. Nearly 90% of Kerala's Nilgiri Thar population is concentrated in the Moonar landscape. The census, which began on April 24th, covers 89 survey blocks in Kerala and 182 blocks in Tamil Nadu. In Kerala, the survey extends across 19 forest divisions from Thiruvananthapuram to Wayanad. Forest personnel and wildlife experts are using scientific methods, including bonded count and double observer method. Camera traps also have been deployed in selected areas to improve monitoring in difficult terrain. The Nilgiri Thar, endemic to the Western Ghats, is listed as an endangered species under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Officials say the ongoing exercise is aimed at assessing population trends, habitat conditions, and conservation threats, including habitat fragmentation, climate change, and human disturbance. The Kerala's Forest Department says the findings underline the importance of protected grassland ecosystem in Moonar and Iravikulam for long-term survival of the species. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
दोस्तों, अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में दो नए विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं लाइट हाउस डाइव साइट पर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा रिकॉर्ड स्थापित किया गया। यह उपलब्धि न सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का एक क्षण है। सुनिए एक रिपोर्ट।
अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दो नए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस अभियान में प्रशासन, अंडमान निकोबार पुलिस, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अनुभवी स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा लाइट हाउस डाइव साइट पर पानी के भीतर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया। इस पूरे अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही और सभी प्रतिभागियों के समर्पण, साहस और टीम वर्क की सराहना की गई। यह उपलब्धि न केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है।
एंड नाउ वी हेड टुवर्ड्स माय फेवरेट प्लेस मोनिश, वी आर गोइंग टू गोवा। वेल, टू सेफगार्ड गोवाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ परफॉर्मर्स, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has launched a new scholarship scheme dedicated to traditional arts. This initiative aims to provide financial stability to students pursuing various disciplines from classical music to the ancient folk traditions of the state. Let's hear more from our correspondent.
The newly announced scholarship is designed to encourage youth to master traditional performing arts, including classical music, Bharatanatyam, Kathak and folk dance. Notably, the scheme places a strong emphasis on indigenous Goan art forms such as Dashavatar and local theatre. Under this initiative, selected students will receive financial assistance ranging from 3,600 to 9,000 rupees to help cover their training fees. The Chief Minister emphasized that the primary objective of this scheme is to inspire young artists and ensure that Goa's vibrant cultural legacy continues to thrive. By providing this support, the government hopes to create a sustainable environment for traditional performers who are the custodians of the state's heritage. Aspiring artists are encouraged to take advantage of this opportunity as the application process is already underway. Interested candidates must submit their applications by the 30th of May to be considered for the scholarship. For Parikrama, Mahesh Sobre, Akashwani News, Panji.
और सायरा, ले चलिए हमको खेल के मैदान में और हमें बताइए क्या है वहाँ हलचल।
Well, in IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans at Sawai Mansingh Stadium in Jaipur. The match will start at 7:30 PM.
दोस्तों, आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
आज हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे।
गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था,
मैं गोखले से मिला, वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी, तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था, हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांग नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है।
19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन।
एंड नाउ वी आर रिमेम्बरिंग सम मोर पर्सनालिटीज मोनिश। वी आर स्टार्टिंग विद महाराणा प्रताप और प्रताप सिंह द फर्स्ट। वेल ही वॉज द किंग ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़, ये हम सब जानते हैं। एंड ऑफकोर्स टिल द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड ही वॉज देयर अंटिल हिज डेथ इन 1597। नोटेबल फॉर लीडिंग द राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी।
दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञता के लिए अमर है। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के थे और वो तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। और दोस्तों, आज ही है पुण्यतिथि तेनजिंग नोरके की। उन्हें शेरपा तेनजिंग के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाली चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग में स्थापना की गई और तेनजिंग नोरके को उसका निदेशक बनाया गया। उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज रखा गया।
That's right, Monish. We are also remembering a very fine playback singer who is considered one of the greatest and most popular Indian male film and ghazal singers. We are talking about Talat Mehmood. Yes, today is Talat Mehmood's death anniversary. And although he tried his luck as a film actor, Monish, wo acting mein unko itni zyada jo hai keh sakte hain success nahi mili. But of course, we know that his voice was magical. Aur kitne saalon tak unki awaaz jo hai, bahut bade bade actors ko unhone awaaz di, chahe wo Dilip Kumar ho, chahe Sunil Dutt ho, isn't it? And the government of India, of course, conferred the Padma Bhushan on Talat Mehmood in the year 1992.
तो क्यों ना फिर तलत साहब की आवाज में सुनी जाए उनकी कुछ शानदार अदायगी जिसे हम आप अक्सर गुनगुनाया भी करते हैं।
बिल्कुल।
जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके
दिला दिया आपने। सुनील दत्त साहब जो हैं फोन पर गीत गा रहे थे
नूतन के लिए।
और बताइए, और कौन से गीत आपको उनके याद आते हैं?
वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट रोमांस एंड ट्रेजेडी, ये दो मूड्स के तो कह सकते हैं तलत महमूद ने महारत हासिल कर ली थी। तो क्यों ना अभी तो हम लोगों ने एक बहुत ही रोमांटिक गजल या गीत जो कह लिए सुना, एक जो ट्रेजेडी और ट्रेजिक गाने होते हैं दर्द भरे, क्यों ना वो भी सुन ले।
बिल्कुल।
मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना कराया मेहरबाना
दोस्तों। दरअसल यहीं से तलत और दिलीप कुमार का एक अनूठा संयोग बना जो कई फिल्मों में दोहराया भी गया। और महमूद ने हिंदी की 13 फिल्मों और 3 बांग्ला फिल्मों में तलत साहब ने कहना चाहिए अभिनय किया और 17 भारतीय भाषाओं में सायरा उन्होंने गाने गाए।
Wow, that's amazing. And of course, we all know ke Talat Mehmood ke aur kitne saare gaane hain, but zahir hai itne kam waqt mein hum log sirf do hi aapke saamne present kar paaye. And now, of course, the clock is showing that it's now time to wrap up the show.
Bilkul ijazat dijiye dosto, hum lete hain aapse aagya.
Namaskar. Namaskar.